हम सभी के बीच में सदा ही आज्ञाकारी, सदा हाजी का पाठ जिनके जीवन में एक महामंत्र के रूप में वर्णित है, नम्रता की मूरत और सरलता की सूरत, ऐसी हमारी आदरणीय डॉक्टर सविता बेन जी का हम बहुत दिल व जान से को प्रेम से स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। आपका एक परम सौभाग्य रहा है कि आप जब इस यज्ञ के अंदर समर्पित हुए तब से लेकर के हमारे परम श्रद्धेय बड़ी दादी जी, उसके अंग संग रहने का आपको एक परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर दीदी जी को हम कहे कि दादी जी के अंग संग का आप अनुभव सुनाओ, तो मैं समझती हूँ सारा ग्रंथ दीदी जी हमें यहाँ रख करके सुना सकते हैं। ऐसा इतने अनुभव दीदी जी का, दादी जी के अंग संग का है, क्योंकि जब दादी जी की लास्ट में और थोड़ी थोड़ी नादुरुस्त तबीयत होने लगी थी, तब से दीदी 24 घंटा में कहूंगी दादी जी के साथ थे उस समय। और आप महिला विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हो और मधुबन के अंदर शांतिवन में हजारों शिविरार्थी भाई बहने आते हैं, उनकी पालना आप आपके ज्ञान रत्नों की क्लासेस के द्वारा बहुत ही सुंदर रीति से करते हो, तो आज हम दीदी जी से सुनेंगे निरंतर देही अभिमानी स्थिति हमारी कैसे बने। ओम शांति।
ओम शांति। हम सभी को बाबा ने तिलकधारी, तख्तनशीन और ताजधारी बनाया है। हैं सभी तिलकधारी? तो कौन सा तिलक लगाए? ये तिलक नहीं जो लगाया हुआ है, आत्मिक स्मृति का तिलक। तो देखो, ये स्थूल तिलक भी जो लगाते हैं ना, जैसे अभी बहने लगाती हैं और वो भाई लोगों को मंदिर में लगाते हैं, ऐसे ही कहेंगे, तो जो लगा लेते हैं वो भी लगा रहता है। तो फिर ये तिलक जो है, जो बाबा ने आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया है, ये भी लगा रहना चाहिए या नहीं लगा रहना चाहिए? लगा रहता है हा? किसको लगा रहता है? बहुत कम है। अभी तो भट्टी कर रहे हैं, अभी तो लगा हुआ होना चाहिए, नहीं? तो कैसे लगा होता है? जब योग में बैठते हैं तब लगाते हैं, फिर मिट जाता है। फिर काम में जाते हैं, अपना कारोबार व्यवहार में जाते हैं, तो वापस कहाँ आ गए? देह अभिमान में। तो बाबा ने हमें ऐसा देही अभिमानी नहीं बनाया है। बाबा कहता है हमारा निजी स्वरूप ही आत्मा है। इस देह में तो आत्मा मेहमान है। मेहमान है या मैं देह हूँ, क्या कहेंगे? मेहमान है ना, डबल मेहमान है। एक तो परम धाम से सृष्टि पर मेहमान है और दूसरा इस शरीर में भी मेहमान है। तो मेहमान का अपना नहीं होता है, उसको पता है कि मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ हूँ, फिर मुझे जाना है। तो इस तन में भी आत्मा थोड़े समय के लिए है और फिर वापस अपने घर जाना है। और बाबा ने हमें ये समझाया है कि संगम युग पर ये तन जो मिला है, ये ईश्वरीय सेवा अर्थ अमानत है। तन मन धन सब कुछ तेरा, ऐसे कहते हैं भक्ति में, तो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, तो हमने भी बाबा को कहा तन मन धन सब कुछ तेरा, कहा कि नहीं? कहा कि ये तन मेरा है, थोड़ा थोड़ा मन मेरा है, क्या कहेंगे, या भक्त जैसे कहते हैं सिर्फ कहते हैं, तो हमने भी सिर्फ कह दिया और बाकी तो मेरा है, क्या कहेंगे, बाकी मेरा है या सब कुछ तेरा है। ये भक्ति में हम उस बात की गहराई में जाते हैं। पहले तो हम सिर्फ सुनते सुनते हैं ना ज्ञान, तो ज्ञान सुनना और खुश होना वो अलग बात है, लेकिन वो बात मुझ में समा जाए, यानी मेरे जीवन में स्वरूप में आ जाए, मेरी स्मृति में रहे, उसके लिए तो भक्ति होती है। तो हम समझे उस बात की गहराई को कि बाबा ने किस लिए हमें ये बात कही है। तो सारा दिन जिसको भी मैं देखती हूँ, स्वयं को भी आत्मा समझे और जिसको हम देखते हैं उसको भी आत्मिक दृष्टि से ही देखें। तो यदि मेरी दृष्टि वृत्ति निरंतर आत्मिक है तो रूहानियत होगी, चेहरे पर जो दिव्यता दिखाई देती है, रूहानियत दिखाई देती है, वो आत्मिक दृष्टि से आती है। देह अभिमान की दृष्टि से दिव्यता आ सकती है, देवी देवताओं को हम दिव्य दिखाते हैं, दिव्य कहते हैं ना उनको, देवता शब्द दिव्य से बना है और देने वाले से बना है, एक तो वो सदा दाता है और दूसरा वो सदा दिव्य है, क्योंकि वो निरंतर आत्म अभिमानी है, देह अभिमान का नाम निशान भी नहीं है देवताओं के अंदर। तो संपर्क में, कार्य व्यवहार में हम आते हैं दुनिया में, लोगों को हमसे वो दिव्यता तब अनुभव होगी, वो रूहानियत तब अनुभव होगी जब मेरी दृष्टि आत्मिक है, और वो भी महसूस करते हैं कि इनकी दृष्टि हम जैसी साधारण दृष्टि नहीं है। जैसे कहते हैं ना, योगी की दृष्टि सदा सुखकारी, यानी दृष्टि ही आत्माओं को सुख और शांति का अनुभव कराने वाली होगी, उन्हें शक्तियों का अनुभव कराने वाली होगी। और दूसरी बात, उस दृष्टि वृत्ति में पवित्रता रहेगी। आत्मिक दृष्टि वृत्ति यानी देह भान से परे हैं तो शुद्ध और पवित्र दृष्टि है, तो जो दूसरों के विकारी वाइब्रेशंस हैं, आज कलयुगी दुनिया में हम रहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हीं वाइब्रेशंस में रहते हैं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो आत्माएं तो पुरुषार्थ नहीं कर रही हैं, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाए या उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाए। तो अगर मेरी आत्मिक दृष्टि नहीं है तो उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जाएगा। नेगेटिव वाइब्रेशंस कई बार ज्यादा पावरफुल होते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस से, है ना, लेकिन अगर मेरी देही अभिमानी स्थिति है तो मेरा प्रभाव उनकी अपवित्रता को भी खत्म करने वाला है। तो क्या करना है, क्या करना है? कई बार कई भाई बहने शिकायत करते हैं कि क्या करें बहन जी, हाँ? बाहर का वातावरण ही ऐसा है ना, माहौल ही ऐसा है आज के समय में, थोड़ा बहुत तो आग होगी तो सेक आ ही जाएगा, ऐसे कहते हैं ना। तो हम विश्व परिवर्तक हैं या वो विश्व परिवर्तक हैं? हम विश्व परिवर्तक हैं। तो पहली बात कि हमने देह को देखा, माना बाबा कहता है देह को देखना माना सांप को टच करना, और सांप को टच किया तो डसेगा, और डसेगा उसमें क्या है, जहर है, तो फिर वो जहर तो फैलना ही है, है ना। तो इसीलिए ये अपना पुरुषार्थ है कि मैं कितना देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास निरंतर करती हूँ। अटेंशन, जैसे ब्रह्मा बाबा का सुनते हैं हम, सुना है ना, कैसे ब्रह्मा बाबा को जैसे ही ये स्मृति आ गई कि मैं आत्मा हूँ, बाबा ने किताबें भर भर के, पक्का होने में टाइम लगता है ना, क्योंकि जन्मों का देह अभिमान का अभ्यास है, एक जन्म का नहीं 63 जन्म का है, तो केवल ज्ञान आ जाने से हम देह अभिमानी नहीं हो जाएंगे, घुटना पड़ेगा उसको, जब तक घोटेंगे नहीं तब तक वो टिकने वाला नहीं है। आपने एक बार टिकाया फिर मिट गया, फिर टिकाया, फिर जो बताया ना तिलक जो है वो ये लगा रहता है, लेकिन वो तिलक तो तुरंत फटाफट मिट जाता है। तो उतना ही अभ्यास हमें प्रवृत्ति में रहते हुए भी करना है। और जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो बाबा से हमारा योग भी सहज लगता है, क्योंकि शिव बाबा भी निराकार है, मैं आत्मा निराकारी स्थिति में हूं, तो मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है फटाफट। यानी ज्वालामुखी योग की स्थिति का यदि हमें अनुभव करना है तो आत्मिक स्थिति का होना जरूरी है। अगर ज्वालामुखी योग नहीं कर रहे, हम सीधा रूढ़ियान कर रहे हैं बाबा से, अनेक प्रकार के योग हम करते हैं, कर्म योग हम कर रहे हैं, बाबा से संबंधों के रूप में अनुभव कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन लगन में मगन स्थिति, पूरी एकाग्रता की जो स्थिति योग में बनती है, वो आत्मिक स्थिति में स्थित होने पर ही अनुभव होती है। जैसे हम कहते हैं कि विकर्म विनाश होते हैं, योग से विकर्म विनाश होते हैं, रोज बाबा मुरली में कहता है। तो कौन सी याद से विकर्म विनाश होते हैं? साधारण याद से विकर्म विनाश नहीं होते। कौन सी याद से? जो पावरफुल योग है, ज्वालामुखी योग है, तभी उसको ज्वाला कहा। यानी योग अग्नि का रूप ले, कहते ना लेंस लगा दिया तो सूरज की रोशनी में जो कागज रखा हुआ है वो जल जाएगा, वैसे कागज पड़ा रहे महीनों तक सालों तक कुछ नहीं होने वाला। कब जलेगा? जब फोकस करेंगे उसको, एक पॉइंट पर पूरी एनर्जी फोकस हो गई तब वो कागज जलेगा। तो मेरे भी विकर्म कब भस्म होने वाले हैं? जब बाबा की पूरी सर्व शक्तियां आत्मा पर, केवल आत्मा पर फोकस हो जाए, आत्मा पर पूरी तरह से एकाग्र हो जाए, तो जैसे कहा कि अग्नि में तप कर सोना शुद्ध हो जाता है, ऐसे आत्मा भी उस योग अग्नि में तप कर शुद्ध होती है, फिर हम खुद ही महसूस करते हैं। ऐसी योग की स्थिति से वापस आने पर अपने आप महसूस होता है कि मन जैसे निर्मल है, मन पावन हो गया है। आप कोई अशुद्ध संकल्प करना भी चाहेंगे ना तो भी नहीं कर सकेंगे, कोई अशांति की बात सोचना चाहेंगे ना तो भी चलेगी नहीं वो, क्योंकि मन में वो पावर आ जाती है। तो इसीलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास अगर निरंतर होगा तो बनेगी, योग में बैठेंगे, अगर नहीं तो युद्ध में समय चला जाएगा। कई तो कहते हैं आत्मा का अनुभव ही नहीं होता है, आत्मा कहना तो बड़ा आसान है लेकिन हम तो बाबा के पुराने बच्चे हैं, ये तो नए नए बच्चे जो है वो ये कहते हैं कि सुन तो लिया आत्मा हूँ लेकिन आत्मा का अनुभव तो हुआ ही नहीं। कहेंगे ऐसा कि आत्मा का अनुभव नहीं हुआ? अनुभव है ना, अनुभव से ही हम जानते हैं और बाबा को याद करते हैं। तो हम देखते तो नहीं है ना, आत्मा को देखते हैं ना शिव बाबा को देखते हैं, मतलब ना परमात्मा को देखते हैं, लेकिन तीसरे नेत्र का वो अनुभव है, तीसरे नेत्र से देखा भी है और तीसरे नेत्र से जाना भी है बाबा को, और उस तरह से उस याद का हम अनुभव, वो कनेक्शन फील करते हैं। और अशरीरी स्थिति या आत्मिक स्थिति जो परम धाम में बिंदु रूप स्थिति है, मन जब परम धाम में चला जाता है तो फिर सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न, संपूर्ण पवित्र, जिसको कहते हैं बीज रूप स्थिति में सारा सार समाया हुआ है। वृक्ष का बीज होता है, उसमें पूरा वृक्ष समाया है लेकिन बीज है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो आत्मा की वो बिंदु रूप स्थिति जो हम परम धाम में अनुभव करते हैं, एक होता है नीचे चलते फिरते हम देही अभिमानी स्थिति में है, इस तन में मैं आत्मा हूँ, इस तन से बिल्कुल न्यारी हूँ, कर्मेंद्रियों से न्यारी हूँ, ये अनुभव करना कि इस तन में जैसे आत्मा मेहमान है। लेकिन एक है परम धाम में अपने उस अनादि, अनादि आदि, उस शुद्ध पवित्र संपूर्ण स्थिति का अनुभव करना, जिसे बाबा कहता है बिंदु रूप स्थिति योग की सबसे पावरफुल स्थिति है। और वो योग भी हमारे विकर्म विनाश करने वाला है, बाबा बिंदु और मैं बिंदु। या ऐसे तो नहीं कहेंगे बिंदु बिंदु क्या, बोर हो जाते हैं बिंदु स्थिति में, कई बार तो एकदम शांत हो जाते हैं। शांत हो गए माना, शांत हो गए माना, सो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता है कि कोई संकल्प नहीं चल रहा है, माना बिल्कुल शांत। और खासकर अमृत वेले ऐसा दृश्य देखते हैं, तो जब ऐसा दृश्य देखते हैं तब फिर लगता है कि नहीं, संकल्प चलने चाहिए। बिंदु रूप स्थिति में जाएंगे तो वो अनुभव ही खत्म हो गया जैसे, नहीं। लेकिन बिंदु रूप स्थिति वास्तव में बहुत पावरफुल स्थिति है, अगर हम उस स्टेज में बाबा के समान स्थिति में जाकर उसको अनुभव करें। ये बाप समान स्थिति है, शिव बाबा निराकार संपूर्ण है ना, तो वो उस समान स्थिति है। फिर जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, निरंतर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, ये स्थिति कर्म भोग को कर्म योग से सूली से कांटा बनाने वाली। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, दर्द होता है तो इंजेक्शन लगाते हैं, तो कितनी देर में दर्द खत्म हो जाता है? कुछ मिनट लगते हैं और दर्द खत्म, मरीज को बिल्कुल आराम मिल जाता है। तो बाबा ने ऐसे ही कहा है कि अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया, माना आपको जैसे इंजेक्शन लग गया, क्योंकि डिटैच हो गए ना शरीर से बिल्कुल। तो कई लोग तो ऐसा अभ्यास करते हैं कि अशरीरी स्थिति में चले गए, माना एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं है। मुझे याद है अपने एक दो बीके भाई बहनों ने ऐसा अनुभव सुनाया था कि उन्होंने दांत का काम करवाया डॉक्टर से बिना इंजेक्शन लगवाए, और कुछ भी दर्द उनको फील नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल शरीर से जैसे डिटैच हो गए, है ही नहीं देह में, तो वो दर्द की फीलिंग ही खत्म हो जाती है। तो सचमुच ऐसा अनुभव होता है कि कैसे कर्म भोग के समय जब हम बाबा को उस स्थिति में याद करते हैं, तो बाबा की पूरी रूहानी शक्ति हमारे कोई भी कर्म भोग के दर्द को खींच लेती है। बहुत बाबा के बच्चों का ये अनुभव है, कोई एक दो का नहीं, लेकिन कई लोगों के अनुभव ज्ञानामृत में आते भी हैं। इवन मेरा भी खुद का अनुभव है, न सिर्फ हम खुद, हम दूसरों को भी करा सकते हैं। मेरे को याद है एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हम सबको अपने हिसाब किताब तो खत्म करने ही हैं यहाँ पर, तो हेड इंजरी हुई थी और इसीलिए वो सिर में झटका लगा तो बेहोश हो गए। तो मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैं सो रही थी और पता ही नहीं चला, बेहोश हो गए। और जब तक हॉस्पिटल में आए, थोड़ा सिर में चोट थी, टांके वहां के लगाए डॉक्टर ने, उसके बाद होश आया एक घंटे के बाद। तो मैंने ऐसा फील किया, क्योंकि जब मैं गाड़ी में बैठी थी तो मैं बिल्कुल यही अभ्यास कर रही थी, बाबा की याद में थी और कुछ इस तरह से मैं अभ्यास कर रही थी। तो एकदम जब मुझे होश आया, तो क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं देखने लगी आसपास कि मैं कहाँ आ गई ऐसे। फिर कपड़े वपड़े देखकर मुझे समझ में आया, लेकिन मुझे इतनी पावरफुल आत्मिक स्थिति का अनुभव हो रहा था अपने आप, मतलब कोई मेहनत नहीं, जैसे कि कोई दर्द नहीं है और नहीं के बराबर, जैसे कि कुछ नहीं हुआ है, ऐसी फीलिंग मुझे हो रही थी। हालांकि उस समय कोई स्कैन वगैरह भी नहीं किया था, अभी सिर्फ स्टिचेस ही पूरे किए थे डॉक्टर ने, स्कैन करना बाकी था कि कोई इंटरनल चोट वगैरह तो नहीं है। फिर मेरे से उन्होंने पूछना शुरू किया, क्योंकि पूछते हैं, पूछने से पता चलता है कि कहाँ तक इसमें गहरी चोट है। तो मैंने सब बिल्कुल नॉर्मल जवाब दिए, सबको पहचान रही थी मैं, जो भी मेरे पास सामने खड़े थे। और फिर उसके बाद स्कैनिंग हुई तो सारी अंदर की रिपोर्ट नॉर्मल थी, बाहर की चोट थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखते हैं। कुछ टाइम पीरियड होता है कि 72 आवर्स आपको रहना है उसमें। तो मैंने ये देखा कि मैंने उस जो मुझे अनुभव हुआ उस समय सोल कॉन्शियस स्टेज का, शायद उससे पहले ऐसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। वो स्थिति में मुझे दर्द की फीलिंग होनी चाहिए, या मुझे ऐसा लगे कि मेरे साथ क्या हो गया। कभी कभी हम क्वेश्चन भी करते हैं ना कि ड्रामा में ये क्या सीन था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं, एकदम स्टेबल माइंड और सहज अशरीरी स्थिति का अनुभव, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। 3 दिन कहाँ गए, ऐसे लग रहा था कि मैं बेड पे नहीं सोई हूँ, जैसे कोई फूलों की सेज पे सोई हूँ। तो ये किसकी मदद थी? बाबा की मदद ना। तो सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत की और बाबा की इतनी मदद कि बिल्कुल वो सूली से कांटा क्या फूल हो गया, ऐसे ही कहेंगे, कांटे जैसा भी दर्द नहीं हुआ और बहुत आराम से कुछ दिनों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। तो ऐसे हम अनुभव करते हैं जब हम योग का प्रयोग करते हैं। मैंने ऐसे बहुत, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में काम किया है तो कई बार कई पेशेंट्स भी हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, मनसा सेवा जिसको बाबा कहता है, तो ऐसे किए, जिन पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए उन लोगों को रियल में उस चीज का, उनको ऐसे लगता नहीं था कि हम इस तरह से ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो उस तरह से ठीक। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो सब में नहीं जाऊंगी, वो अलग विस्तार हो जाएगा, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि किस तरह से हम अशरीरी स्थिति में बाबा की शक्तियों को महसूस करते हुए कर्म भोग को सहज चुक्तु कर सकते हैं। और बाबा कहता है ये कर्मातीत स्थिति है, यानी कर्म बंधन से न्यारी स्थिति है। जब हम इस स्थिति से संबंध में आते हैं तो कर्म संबंध हो जाते हैं। कर्म बंधन जब हम कहते हैं तो वो दुख देने वाला है। अगर हमें किसी भी संबंध में दुख अनुभव हो रहा है ना, मानो आज भी ब्राह्मण परिवार में है या अपने लौकिक परिवार में है और कोई आत्मा से मेरा हिसाब किताब है, हिसाब किताब तो है ही, सबको अपने हिसाब किताब यहाँ ही खत्म करने हैं, तो कहीं स्वभाव संस्कार का टकराव होता है या कुछ भी, किसी ने कुछ कहा, हमने सुना, हमको फीलिंग आई, तो जहां भी दुख अनुभव हुआ इसका मतलब वो अभी तक भी कर्म बंधन का रूप है। लेकिन ऐसा सब कुछ होते हुए भी मुझे दुख की फीलिंग नहीं है, लेकिन बहुत सहज रूप से हम सुख का अनुभव करते हुए उसे पार कर लेते हैं, तो हम कहेंगे वो कर्म बंधन नहीं, अभी क्या हो गया, कर्म संबंध हो गया, है ना। तो ये अनुभव हमें आत्मिक स्थिति में रहने से होता है, क्योंकि जब हम आत्मिक स्थिति में हैं तो हम क्या देख रहे हैं, उस आत्मा के भी अनादि स्वरूप का हम अनुभव करते हैं। उसके वर्तमान संस्कारों को हम नहीं देखते, उसकी वर्तमान कमियों को हम नहीं देखते, लेकिन वो आत्मा शांत स्वरूप है, पवित्र आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, ये भी देवी देवता बनने वाली आत्मा है, जो भी उसका वो स्वरूप हमने देखा जो हम भविष्य में होने वाले हैं या अनादि स्वरूप में। और मेरे भी उसी स्वरूप का अनुभव मुझे होता है जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं। आत्मा को याद किया, माना आत्मा के गुण स्वतः स्मृति में आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। हाँ, सूर्य का संबंध प्रकाश से है, गुलाब के फूल का संबंध उसकी खुशबू से है, अग्नि का संबंध गर्मी से है, जुड़े हुए ना साथ में। तो आत्मा अनुभव किया माना आत्मा के गुण स्वतः ही इमर्ज होंगे, स्मृति में आएंगे। तो मैं भी अपने उस स्वरूप में हूं, यानी जो मुझे वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहा है, जो गहरा है, हाँ, जो दिखाई नहीं देने वाला है, वो हम देखने की क्षमता रखते हैं। तो फिर हम बंधन को तुरंत परिवर्तन करके उसको संबंध में ले आते हैं, और मेरी वृत्ति और भावना उस आत्मा की वृत्ति को भी बदल देती। बाबा कहते हैं ना, वृत्ति से वृत्ति को परिवर्तन करने की सेवा करो। तो कैसे वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन होगी? जब मेरी निरंतर वो शुभ भावना होगी, और वो निरंतर शुभ भावना आत्मिक स्थिति, देही अभिमानी स्थिति रखने से ही होती है। दूसरी स्थिति बाबा कहता है फरिश्ता स्थिति, ये भी अशरीरी स्थिति है। हालांकि देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास कई बार हमें कठिन लग सकता है, लेकिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना, वो फिर भी सहज है। तो हम ये अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा की आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो बाबा ने पहला जो अभ्यास किया वो आत्मिक स्थिति का किया, लेकिन गुलजार दादी जब छोटे थे और वो बाबा के पास जाते थे संदेशी के रूप में, तो एक बार बाबा ने उनको ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता रूप दिखाया, संपूर्ण स्वरूप दिखाया, लाइट का स्वरूप दिखाया। ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं था कि मेरा कोई लाइट का स्वरूप भी है, मेरा कोई संपूर्ण स्वरूप ऐसा भी है। तो उनको समझ में नहीं आया, गुजार दादी ने आकर के मम्मा को सुनाया, क्योंकि मम्मा उनसे सारा सुनती थी बाबा ने क्या संदेश दिया। तो उन्होंने कहा कि आज मैंने बाबा को लाइट के रूप में देखा, ऐसा बाबा नहीं जो नीचे है बाबा, यही बाबा ऊपर बिल्कुल पूरा लाइट था, मतलब शरीर नहीं था लेकिन सिर्फ लाइट लाइट दिख रही थी। और उसने मुझे कहा कि उस बाबा को, माना नीचे वाले बाबा को, मेरे जैसा बनना है। तो नेचुरली उनको पहले कभी ऐसा बाबा ने अनुभव ही नहीं कराया, तो उनको समझ में भी नहीं आया। तो मम्मा ने बाबा को सुनाया, तो बाबा को भी नहीं समझ में आया, तो बाबा ने फिर कहा मम्मा को कि गुलजार बच्ची को बोलो कि फिर से जाए। और ऑलमाइटी बाबा, शिव बाबा को ऑलमाइटी बाबा कहते थे, तो ऑलमाइटी बाबा से पूछ कर आए कि वो कौन सा बाबा है, ऊपर कोई अलग बाबा है और मैं अलग हूं, ऐसा कुछ है। फिर दोबारा गई गुलजार दादी, तो फिर बाबा ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मा बाबा का ही संपूर्ण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप ये बाबा है, और उनको कहो ऐसा पुरुषार्थ करे कि देह में रहते हुए डबल लाइट स्थिति बने, ये लाइट की स्थिति बने। और उसके बाद ब्रह्मा बाबा ने विशेष तपस्या शुरू की उस लाइट स्वरूप के अभ्यास की। तो बाबा कई बार कहते हैं चलते फिरते अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करो, मैं लाइट हूं, मतलब आत्मा तो लाइट है ही है, लेकिन ये जो शरीर है वो भी लाइट है, इसको डबल लाइट कहते हैं। अनुभव कर सकते हैं, कर सकते हैं, अभ्यास करना पड़ेगा ना, क्योंकि देह अभिमान में पूरी तरह से हैं, तो दोनों ही स्थितियों का अभ्यास करने से ही वो स्थिति बनेगी। तो एक बार बाबा ने मुरली में कहा था हर घंटे में कम से कम 5 मिनट, क्योंकि बिजी तो होते हैं ना अपने कारोबार में, कर्म में, तो भले बिजी हैं, बुद्धि बिजी होती है, लेकिन 5 मिनट तो हमें जरूर मिलते हैं। तो वो 5 मिनट पूरी तरह से अशरीरी स्थिति या फरिश्ता स्वरूप यानी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो, देह से बिल्कुल न्यारे हो। देह को जैसे हम साक्षी होकर के देख रहे हैं, और कई बार हम अपनी देह को सकाश भी दे सकते हैं ऊपर से, अगर हम नीचे देख रहे हैं परम धाम से या सूक्ष्म वतन से, तो जैसे कि हम अपने आप को भी सकाश दे रहे हैं। से कई बार दादी जानकी सुनाते हैं। तो जब ये लाइट स्वरूप की स्थिति का चलते फिरते अभ्यास होगा, तब बाबा कहता है अन्य आत्माओं के लिए आप साक्षात्कार मूरत बनेंगे। साक्षात्कार आत्माओं को तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारी डबल लाइट स्थिति नहीं बनी, और ब्रह्मा बाबा ने वो स्थिति बनाई। जब जैसे ही बाबा को ये समझ में आई बात, तो साधारण कर्म करते, हमने सुना बाबा कैसे साधारण कर्म करते थे, सब काम करते थे बाबा, बच्चों के साथ सब्जी भी काटते थे, वो गोबर के गोले भी बनाते थे, अनाज भी साफ करते थे, पूरा कर्म योग, माना कर्मणा सेवा भी बाबा पूरी तरह बच्चों के साथ यज्ञ में करते थे। तो ऐसे कर्म करते हुए भी कोई बाबा से मिलने आए, मानो आते बाबा से पार्टियां मिलने आती थी, कई बार अफसर वगैरह भी मिलने आते थे बाहर के, तो फिर उनको वैसे ही साक्षात्कार हो जाता था, बाबा से उसी रूप में ही साक्षात्कार हो जाता था। यानी साधारण रूप में बाबा फरिश्ता दिखाई देते थे या देवता रूप में उनको दिखाई देते थे। शुरू शुरू में भी जो सब ओम मंडली में साक्षात्कार हुए बाबा के, वो वही फरिश्ता स्वरूप के ही साक्षात्कार हुए, है ना। तो ये अभ्यास से बाबा आज भी साक्षात्कार कराते हैं। आज भी देखो देश विदेश में लोगों को ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप के साक्षात्कार होते हैं, और कई बार लोग उस साक्षात्कार से ही ज्ञान में आते हैं। आप में से कोई है जो ऐसे साक्षात्कार से ज्ञान में आए? देखो कोई कोई है। तो हमारे द्वारा भी बाबा कहता है हो सकता है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ शायद नंबर वन नहीं है, जैसे ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था। तो इसको विशेष डबल अंडरलाइन करना है, भले प्रवृत्ति में रहते हैं, भले कारोबार में रहते हैं, यज्ञ में जो रहते हैं उनकी भी तो प्रवृत्ति है ना, वो शायद मैं समझती हूँ परिवार में रहने वालों की प्रवृत्ति से भी बड़ी प्रवृत्ति है। मैं देखती हूँ बहनों को तो कितना बड़ा परिवार संभालना पड़ता है, ब्रह्मा भोजन बनेगा तो कितने का बनेगा, घर में खाना बनेगा तो शायद 10 लोगों का बनेगा, लेकिन ब्रह्मा भोजन बनेगा तो 100 लोगों का बनेगा, या अब तो कितना दैवी परिवार बड़ा हो गया, तो वो प्रवृत्ति तो और भी बड़ी प्रवृत्ति है। उसमें रहते हुए अगर वो कर सकते हैं तो घर परिवार में रहने वाले नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते। हमारा सब कुछ किसके लिए है? बाबा कहते हैं फरिश्ता माना सब कुछ तेरा, जिसने सब रिश्ते बाबा से जोड़ लिए, एक बाप दूसरा ना कोई, यही वृत्ति में है सदा, उसके लिए ये अभ्यास करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो हमें ये अभ्यास बार बार अंडरलाइन करके करना है। मेन बात इसमें अभ्यास की ही है, सारी बात जो अशरीरी स्थिति या देहाभिमानी स्थिति की है। और बाबा भी हमें हर दिन मुरली में, कोई दिन मुरली में ऐसा नहीं होता है जिस दिन बाबा हमें नहीं कहता है कि देहाभिमानी बनो। और देहाभिमानी बनने की निशानी क्या बताते हैं बाबा? देहाभिमानी कैसे होंगे, कैसे होंगे? देखते हुए नहीं देखेंगे। अच्छा, और न्यारे और प्यारे होंगे, बिल्कुल। ये बड़ी विशेषता है कि जब चाहें न्यारे हो जाएं और वो बाप के प्यारे होंगे। कई बार कई भाई बहने कहते हैं हम योग तो लगाते हैं लेकिन बाबा के प्यार का अनुभव नहीं होता, बाबा से जो प्यार मिलना चाहिए ना, जैसे लव में लीन हो जाना, बाबा के प्यार में खो जाना, सिर्फ सुनते हैं, कमेंट्री में सुन लेते हैं या जो भी, लेकिन अनुभव नहीं होता है बाबा के प्यार में समाने का या उसके अनुभव में खोने का। क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अगर नहीं होता है, होता है तो हम देह से न्यारे होने की कला हमें आती है। और अगर देह से हम न्यारे नहीं हो पाते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल, क्या कहा बाबा ने, देह को भी भूलना है और देह के संबंधों को भी भूलना है। जब ये स्थिति बनती है तब हम बाबा के संपूर्ण प्यार का अनुभव करते हैं। बाबा के प्यार का अनुभव करना है तो ये शर्त है, संबंधों से भी न्यारा होना है। सर्व संबंध किसके साथ है? एक बाबा के साथ। एक बाबा ही मेरे जीवन का आधार है और भक्ति में विशेष ये अनुभव हम कर सकते हैं। किया है सभी ने बाबा के प्यार का अनुभव, लगन में मगन होने का अनुभव, क्योंकि और बातों से सहज न्यारे हैं, वहां होते हैं प्रवृत्ति में तो फिर भी खींचती हैं कोई ना कोई बातें, कोई ना कोई संबंध, लेकिन यहाँ तो क्यों बाबा ने ये विधि रखी है, ताकि पूरी तरह से मुक्त होकर, बुद्धि स्थूल में भी मुक्त है ना सब बातों से, तो हम उस अनुभव को करें। और अगर नहीं किया है अभी तक, मानो नहीं हुआ है किसी भी कारण से, तो अभी भी आज का दिन है ना, पूरा दिन, तो पूरी तरह से अपने आप को डिटैच करके देह अभिमानी स्थिति में सर्व संबंधों से न्यारे होकर के एक बाप के प्यार में खो जाने का मुझे अनुभव करना है। ये लक्ष्य रखेंगे, हिम्मत रखेंगे तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, बाबा की मदद भी हमें मिलती है। और बस जो अनुभव हम करना चाहें बाबा हमें सहज वो अनुभव कराते हैं। ऐसे ही फरिश्ता स्थिति के लिए बाबा कहता है ये अंतर्मुखी यान की स्थिति, फरिश्तों को उड़ता हुआ दिखाते हैं। कभी भी कोई फरिश्ता रूप दिखाएंगे ना, परियां दिखाते हैं, जैसे कहानियों में भी दिखाते हैं कि वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चली गई, उड़ती कला की निशानी है। तो कब उड़ सकता है व्यक्ति? जब हल्का होता है। अगर कोई भी बोझ है, अब कौन सा हल्कापन, शरीर के हल्केपन की बात नहीं, मन के हल्केपन की बात है, तो मन पर कोई बोझ नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई भी बोझ है, फिर चाहे वो व्यर्थ संकल्पों का बोझ है, चाहे वो जिम्मेवारियों का बोझ है, चाहे वो संस्कारों का बोझ है, कितने प्रकार के बोझ हैं वो दिखाते हैं ना हमारी एक प्रदर्शनी में, एक ग्रस्त को कितने तरह के बोझ होते हैं, पिछले जन्म के पाप कर्मों का भी बड़ा बोझ होता है। तो अगर कोई भी बोझ है तो हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। तो सारे बोझ समाप्त करने का तरीका, सब कुछ किसको दे दो, बाबा को दे दो, सारे बोझ बाबा को दे दिए। तो बाबा हमको ऑफर कर रहा है, अपने बोझ अपने पास मत रखो, सब मेरे को दे दो। एक बार ऐसे ही मुझे एक किस्सा याद आता है, एक बहन सुना रही थी कि एक गांव से एक भाई बाहर पढ़ने के लिए गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, अफसर बन गए, उनको गाड़ी मिलती है सबको। तो फिर गांव में अपने मिलने के लिए आए सभी को, गांव में तो लोग परिवार जैसे होते हैं नजदीक में। तो देखा अभी गांव पहुंचे नहीं थे, सड़क पर थे, तो उन्हीं के गांव की एक माता जी सिर पर गठरी उठा के, खेतों से जैसे लोग लेकर जाते हैं तो गठरी उठा के ले जा रही थी। तो उसने सोचा मेरे पास गाड़ी है और अपने ही जानने वाले हैं, तो उसने उनको ऑफर किया कि माँ जी आप आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं वहीं जा रहा हूँ, आपको उतार दूंगा। तो बैठ गई गाड़ी में, पहले कभी नहीं बैठी थी वो। तो उसने क्या किया, वो गठरी को सिर पे ही रखे रखा। तो उस भाई की नजर गई, उसने कहा माँ जी आप गठरी क्यों नहीं गाड़ी में रखती हो नीचे। उसको ये भी नहीं पता था कि तो ये अज्ञान है। हाँ, तो बाबा हमें कहता है कि आप अपनी गठरी मुझे सौंप दो, लेकिन हम भी ऐसे ही करते हैं कुछ कि मेरी गठरी तो मैंने पकड़ रखी है, बाकी मैं बाबा का हूँ। हाँ, अपनी सारी गठरी का बोझ तो हम ही लेकर चल रहे हैं। तो पूरी तरह से जब हम बाबा को समर्पित बुद्धि ट्रस्टी बनकर चलते हैं, सब कुछ तेरा मेरा कुछ नहीं, तो फिर वो जो हल्कापन हम महसूस करते हैं, उस हल्केपन से हम कहीं भी विश्व की किसी भी आत्मा की सेवा कर सकते हैं, कहीं भी हम सकाश दे सकते हैं। बाबा कहता है जिसको जो अनुभव कराना है वो आप करा सकते हो। और ये भी बाबा ने कहा कि ये सेवा अंतिम सेवा है या अंतिम समय की सेवा है, और समय प्रति समय इस सेवा की आवश्यकता बढ़ने वाली है। धीरे धीरे वाचा कर्मणा सेवा कम होती जाएगी, हमें फिर समय ही नहीं मिलेगा कि हम वाचा की सेवा इतनी कर पाए जब इतनी आत्माएं क्यू में होंगी। बाबा कहता है जब प्रत्यक्षता होगी तो क्या होगा, इतनी लंबी क्यू होगी आपके सामने तो किसको ज्ञान सुनाएंगे, ज्ञान सुनाने का समय ही नहीं होगा। तो फिर क्या करना होगा उस समय, उस समय क्या करना होगा, बाबा कहता है मिनट मोटर होगी उस समय। मिनट मोटर माना दृष्टि से निहाल करने की सेवा, सकाश देने की सेवा। एक दृष्टि से वो समझ जाएंगे उस आत्मा को जो प्राप्ति होने वाली है, जो प्यास है, जो वो चाहती है भगवान से, उसके हम निमित्त बनेंगे कि वो उसको प्राप्ति हो जाए। लेकिन कब, जब हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ होगी, जब हमारी स्थिति इतनी पावरफुल होगी, तो वो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं अंत में हम बना लेंगे, जब अंत आएगा तब देख लेंगे ना ऐसा होगा तब। अब जैसे भूकंप आ गया नेपाल में अचानक, तो उस समय क्या, कितनी दुखी अशांत परेशान आत्माएं हैं, उस समय हम उनको ज्ञान सुनाने लगेंगे तो वो ज्ञान सुनने की स्थिति में है नहीं, है ना। तो क्या देना पड़ेगा, सकाश देना पड़ेगा, वही उनके लिए सेवा है। और फिर जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जैसे वो तो पूरा करने के लिए फिर दुनिया में सरकारें भी हैं, मिलिट्री भी है, बहुत सारे एनजीओस भी हैं, वो अलग है, वो सेवा नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बाबा ने हमें ही सिखाई है सकाश देने की सेवा, शुभ भावना शुभ कामना से उनके कल्याण करने की सेवा, उन आत्माओं को बाबा के समीप लाने की सेवा, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है। और बाबा कहता है इसके लिए कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर चाहिए। अगर विस्तार को सार में लाने की शक्ति है, दो विशेष शक्तियां ऐसे समय पर काम करती हैं, एक तो समेटने की शक्ति और एक विस्तार को सार में लाने की शक्ति, तब हम कंट्रोल कर सकते हैं। मन को कहा फुल स्टॉप, माना फुल स्टॉप। अगर मैं मन को परम धाम में स्थित करना चाहूं 10 मिनट, हो सकता है बिंदु रूप स्थिति में परम धाम में मुझे 10 मिनट बाबा को बिल्कुल एक ही संकल्प में स्थित होकर के याद करना है, देख सकते हैं। हाँ, या 1 मिनट गए ऊपर, 1 मिनट नीचे, फिर 1 मिनट गए ऊपर, फिर 1 मिनट ऑफिस में, फिर 1 मिनट गए ऊपर, ऐसे अप डाउन करेंगे, क्या करेंगे? तो इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे, ये मेरे मन के ऊपर मेरी रूलिंग पावर अभी तक नहीं है। मन को स्टॉप कहा, माना स्टॉप हो जाए, कितना भी आपका मन उलझन में है, उलझ जाते हैं ना कई बातों में, माना विस्तार में है बहुत, मन इसकी बात सोच रहा है, उसकी बात सोच रहा है, इसने कहा, ये वो किया, जो भी, लेकिन मुझे पता है कि ये सब मुझे नहीं सोचना है, मेरे लिए व्यर्थ है, स्टॉप हो जाएंगे स्टॉप। हाँ, ये अपने आप को चेक करो। हाँ, ये अभ्यास चाहिए, तब जा करके हम वो स्थिति बना सकेंगे जो हमें मनसा सेवा में मदद करे, ठीक है। और समेटना माना सब तरफ के जो ज्यादा अनावश्यक विस्तार हमने किए हुए हैं, कई संबंधों के विस्तार हैं, कई कार्यों के विस्तार हैं, बाबा कहते हैं यहाँ तक कि सेवा, सेवा का भी जो विस्तार है ना, वो विस्तार में रह करके सेवा नहीं करनी है, न्यारे होकर के सेवा करनी है। जब चाहे आसानी से अपने आप को, मतलब सेवा का भी बंधन होता है, सेवा भी बंधन ना बने। बाबा कहता है लोहे की जंजीरें तो छूट जाती हैं, लेकिन बाद में कौन सी सोने की जंजीरें बन जाती है। तो जो अलौकिकता में भी बंधन है, अलौकिकता में भी कहीं ना कहीं मेरा मेरा शुरू हो जाता है, स्वभाव है ना आत्मा का, वो मेरा छोड़ा तो दूसरा मेरा शुरू हो गया, तो लोहे की जंजीर छोड़ के सोने की जंजीरों में आ गए, वो तो उससे भी ज्यादा ज्यादा डेंजर हो गया, ऐसे कहेंगे तो वो भी नहीं। तब हम वो पावर जब हमारे अंदर है, डिटैच होने की पावर, न्यारे होने की शक्ति, तब हम मन को उस स्थिति में अनुभव करते हैं जो कि हमारी फरिश्ता स्थिति के लिए और आत्मिक स्थिति के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो मुख्य तो है कि हमें हर दिन अटेंशन दे करके अभ्यास करना है, और इसीलिए बड़ी दादी जी, हम जैसे बता रहे थे ना, बड़ी दादी जी के साथ का अनुभव है, तो मुझे याद है कि घंटे घंटे का जो ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ था, पहले हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल होता था वो 5 टाइम ही होता था, लेकिन जो घंटे घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ है वो उसके बाद शुरू हुआ। बड़ी दादी जी ने इस बात को समझ के कि बाबा ने जब कहा था कि हर घंटे में कम से कम 5 मिनट अशरीरी स्थिति का अभ्यास, निराकारी स्थिति का अभ्यास करना ही है, ये अभी से बहुत काल का अभ्यास होगा तो वो अंत समय काम आएगा और वो आपको पास विद ऑनर बनाएगा, तो दादी ने इसे शुरू करवाया था। तो ये मैं समझती हूँ 10 साल लगभग हो गए ये हमारा घंटे का ट्रैफिक कंट्रोल भी चलता है, तो हमें भी अटेंशन दे करके, ये हमारे लिए ही है, हम सबको संपूर्ण बनना है ना, बनना लक्ष्य तो यही है, हम क्या बनने वाले हैं, श्री नारायण बनने वाले हैं, तो अंत में पास विद ऑनर होना है, तो पास विद ऑनर होने के लिए ये अभ्यास अभी से चाहिए, ठीक है। तो हम अभी 2 मिनट बाबा को भी याद करेंगे और अशरीरी स्थिति का भी अभ्यास करेंगे। ओम शांति,
ओम शांति। सहज और सरल रीति से हम देही अभिमानी स्थिति कैसे बनाए, वो दीदी जी ने एकदम सहज रीति से हमको सुनाया, जो कि बहुत ही थोड़ा कठिन विषय, लेकिन इतनी सहज रीति से सुनाया जो हम सभी को लगने लगा कि अभी देही अभिमानी स्थिति बनाना एकदम आसान है। और दीदी जी का, दादी जी के साथ संग का अनुभव भी बहुत बड़ा है, कभी सुनेंगे दीदी जी से। दादी जी, दीदी दादी कितनी बार मुरली पढ़ते थे? हर 4 बार मुरली पढ़ते थे, जो मुरली दादी सुनाते थे, लेकिन दादी खुद इतने विश्व का कारोबार संभालते हुए भी बड़ी दादी 4 बार मुरली पढ़ते थे।
दादी एक तो रात को सोते समय, फिर कितने भी देर हो जाए, कभी कभी प्रोग्राम में देर हो जाती थी, यहाँ तक कि बाबा के प्रोग्राम में भी कई बार देर हो जाती थी, तो भी दादी ने, बाबा ने जो मुरली चलाई है पूरा पढ़ के सोएंगे। हम कहेंगे कि दादी अब तो बहुत रात हो गई है, सुबह अमृत वेले भी आप मुरली पढ़ते हैं, सुबह भी तो पढ़ सकते हैं। नहीं, मुरली नहीं पढ़ूंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। मतलब पक्का नियम था दादी का, कुछ भी हो जाए, रात का एक बज जाए चाहे, लेकिन मुरली पढ़कर ही सोना है, और वो भी एक पेज नहीं, एक पैराग्राफ नहीं, पूरी मुरली पढ़ के सोते थे। फिर सुबह अमृत वेले के बाद दादी मुरली पढ़ते थे, मुरली क्लास में सुनाते थे खुद, और शाम को रेस्ट करके जब उठते थे तो भी मुरली पढ़ते थे, चार बार मुरली पढ़ते थे। और इसीलिए हमने देखा दादी बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप थी, स्मृति स्वरूप कहेंगे ना, जो चीज स्मृति में होती है वो स्वरूप में आती है। अब चार बार अगर हमने मुरली पढ़ी तो याद रहेगी, नहीं रहेगी? हाँ, एक बार में तो 10% भी याद नहीं रहती। पूछेंगे बाहर जाके सीढ़ी पर क्या कहा बाबा ने, हाँ तो बहुत अच्छा तो कहा, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। एक बार में ऐसे होता है, हाँ। दो बार पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा याद रहेगा, तीन बार पढ़ेंगे तो काफी याद रहेगा, और चार बार पढ़ेंगे तो लगभग पूरी मुरली हम सुना सकते हैं। तो जो स्मृति में है, यहाँ है दिमाग में, वही कर्म में आ सकता है, और इसी कारण दादी जो है वो बाबा समान कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हुए।
ओम शांति। इसलिए मुरली के चार पेज हैं, चार बार पढ़ेंगे तो चारों याद रहेगा।